ओम शांति। सब आगे आ जाएं। भाई भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। योग में अलग अलग बैठना अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई तो अनुशासन से करनी होती है ना? अगर क्लास करना ही है तो अटेंशन से करना है, तो हमारे अंदर बात जाएंगी, नहीं तो कन रस तक रहेगी, मन में नहीं बैठेगी। तो रजनी बहन आज क्लास कराएगी, अभी ऊपर योग करा के फिर यहाँ आ रही है। और आप सब सुनते हैं कि चारों ओर बहुत अच्छे ग्लोबल फेस्टिवल के प्रोग्राम हो रहे हैं। ये भी एक सुंदर विषय है कि परमात्मा से शक्तियों और वरदानों की प्राप्ति अनुभूति हम कैसे करें। स्वाभाविक है कि हम सबका भी इस विषय पर चिंतन चलता है। हमारा जीवन तो बाबा से ही जुड़ा है और बाबा से हम नित्य शक्ति लेते हैं, वरदानों से अपने आप को भरपूर करते हैं। लेकिन ये समय है कि दुनिया को भी हम बताएं कि हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं। आइए, आपके लिए सीट रखा है। उनकी सही विधि क्या है आप भी चिंतन करना, फिर मैं पूछूंगी एक बार। आप क्या समझते हैं, कैसे शक्ति मिलती है, कैसे वरदानों की अनुभूति हम कर सकते हैं, कौन सी शक्ति मिलती है, कौन से वरदान मिलते हैं? मनुष्य वरदान देते हैं, शक्ति देते हैं, वो क्या है, और भगवान देते हैं, वो क्या है? मंथन करना जानते हैं ना रजनी बहन को? आप दिल्ली के हैं, लेकिन बाबा ने आपको विदेश सेवा में भेजा है बरसों से, फिलीपींस, जापान और भी पता नहीं कितने देशों में आप सेवा में जवाबदारी से कार्य करते हैं, खुद ही बताएंगे तो हम सुनेंगे रजनी बहन।
ओम शांति। जैसे गीता बहन जी बता रही थी, मैं 1979 से विदेश की सेवा पर हूँ। एक्चुअली मैं मधुबन से ही गई, क्योंकि हम जब छोटे थे बचपन से, तब से ज्ञान में और क्लासेस में जाते थे। सुदेश दीदी ने हम लोगों को कोर्स कराया था, हमारी फैमिली मदर को, हमारे परिवार में काफी लोग ज्ञान में हैं दिल्ली से। परंतु जब स्टडी पूरी की तो सुदेश बहन जी ने कहा कि आप सेंटर पे रहो, क्योंकि मैंने कहा और पढ़ाई करूं, उसने कहा नहीं सेंटर पर रहो। तब से मैं पांडव भवन दिल्ली, रजौरी गार्डन से वैसे हम लोग निकले हैं, तो दिल्ली पांडव भवन में 4 साल दादी गुलजार के साथ रही, फिर वहां ट्रेनिंग की। उस समय हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी दिल्ली में पांडव भवन में। फिर मैं मधुबन में आई, दीदी मनमोहिनी थे ना, वो हमारे इंचार्ज थे दिल्ली जोन के। तो 3 महीने मैं मधुबन में रही, 3 महीने ये म्यूजियम है ना नक्की लेख वाला, वहां रही। तो फिर दीदी मनमोहिनी ने कहा आप विदेश सेवा करो, तो फिर मैं दादी जानकी के पास गई। पहले लंदन गई, वहां पर 1.5 साल रही, दादी जानकी की पालना मिली। उसके बाद फिर मैं न्यूयॉर्क गई थी, न्यूयॉर्क में भी 2.5 साल रही। वो सबसे बड़ा टफ था न्यूयॉर्क, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ, तो इंडिया में और एशिया में स्लो लाइफ है, हाँ आराम से चलो, लेकिन अमेरिका में बहुत फास्ट लाइफ होती है। फिर मैंने कहा दादी को कि ये मेरे लिए नहीं है, अमेरिका बहुत फास्ट है, मेरे को थोड़ा स्लो कंट्री चाहिए। तो उसने कहा आप कहाँ जाएंगे, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी स्लो है। फिर 2 साल मैंने सेवा की न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, फिर दादी ने कहा नहीं आप जापान जाओ। तो जापान में एक बहन थी तो लंदन से उसने ज्ञान लिया था शिज़ुको, तो वो अकेली थी, तो दादी ने कहा आप सेवा करो। तो जब मैं पहले दिन टोक्यो पहुंची, ना मेरे को भाषा है ना कुछ, कोई लेने आने वाला भी नहीं था है, तो पहली बार पहुंची तो एक भाई वेलकम कार्ड लेके आ गया। तो मैंने उसको इंग्लिश में पूछा ये कौन, तुम कौन हो, तो वो जापानीज में बोलता था। तो मेरा सामान उठा के रख दिया उसने, मैंने कहा ये भागा लेके जा रहा है सामान, क्यों ले जा रहा है ना भाषा के भी। तो फिर एक भाई ने फोन किया कि वो सेंटर पर आता था, अमेरिकन भाई था, तो उसने कहा रजनी बहन मैंने आपके लिए वेलकम सेवा अरेंज की है। मैंने कहा वो मेरा सामान लेके चला गया। लेकिन फिर भी जैसे नहीं, उस समय रात का टाइम था तो पैसे चेंज करो, फिर बस में बैठो, फिर जाओ सेंटर पर, तो नया नया देश, नई भाषा, हम लोग तो कुछ जानते नहीं। लेकिन एक हफ्ते में मैंने देखा थोड़ा सा भाषा मैंने सीखी, तो इस प्रकार से इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि भाषा के बिना नहीं चल सकता उन देश में, एक शब्द नहीं बोलते हैं इंग्लिश है ना, वो सोचते हैं प्राउड है ना उनको अपने देश का, तो वो भाषा नहीं जानना चाहते इंग्लिश, तो हम लोगों को फिर सीखनी पड़ती है जो भी वहां जाए उनको सीखने। खाली मैं नहीं, और भी फॉरेनर्स जो होते हैं और देश के लोग और इंडियंस जो वहाँ बिजनेस करते हैं टेक्सटाइल कपड़े बिजनेस में, तो वो सब सीखते हैं, क्योंकि उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। तो इसलिए फिर मैंने स्कूल में सीखी जाके थोड़ा सा जापानीज, क्योंकि वो $900 लगे वहाँ। तो एक इंडियन फैमिली थी, उसने कहा रश्मि मैन आपको दिल है सीखने का, हम पैसे देंगे आप सीखो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो उसने पैसे भरे, हम लोग स्कूल में जाकर के 6 महीने हर एक को सीखना पड़ता है, 6 महीने का कोर्स होता है, तो वो कर लो कोर्स तो फिर इजी हो जाता है ना, उनका थोड़ा समझ आता है फिर, क्योंकि वहां पर बुद्ध धर्म के लोग रहते हैं और बुद्धिस्ट हैं और खान पीन भी दूसरा, लेकिन अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कोई चीज नहीं चुराएंगे, तंग नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे सिक्योरिटी है उस देश में। रात को 12 बजे भी आओ कुछ नहीं डर लगता है वहां पर, यह ना बहुत सेफ्टी है, अभी तक भी है। तो इसलिए वहां पर हम लोग अकेले भी जाएं सेवा पर तो मुश्किल नहीं है, लेकिन भाषा के कारण किसी न किसी को साथ रखना पड़ता है ना ट्रांसलेशन के लिए। तो हम लोग तो इतना बोल सकते हैं, वहां 4-5 लेवल होते हैं भाषा के, लेकिन हमको 3 लेवल स्कूल में सिखाए जाते हैं, उसके बाद अपने आप सीखना पड़ता है। तो इस प्रकार से भाषा सीख करके थोड़ा सा वहां पर जो काम काज कारोबार होता है वो कर सकते हैं। तो विशेष वहां पर 3 सेंटर हैं जो हिरोशिमा में और कोबे में और टोक्यो में, सब जगह पर जापानीज बहनों को ही रखा हुआ है, उन लोगों वही लोग चलाते हैं अभी सेंटर। हम लोग तो वहां जाकर के जैसे उनको पालना देते हैं, मदद करते हैं ट्रेनिंग, लेकिन उनको ही आगे रखते हैं क्योंकि उनका देश है, उनको कल्चर पता है, तो वो अपने देश को आगे बढ़ाएं। विशेष हमने ये देखा लोगों को क्यों योग सीखने का दिल होता है वहां, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, बहुत तनाव वाली लाइफ है, सुबह से शाम तक उनको काम करना पड़ता है, पारिवारिक प्यार नहीं होता है, समय नहीं होता है अपने लिए, सोमवार से शनिवार तक काम ही करते रहो, एक इतवार ही मिलता है जो वो लोग अपना घर का काम करते हैं। तो मेडिटेशन सीखने के लिए इसलिए आते हैं ताकि उनको शांति का अनुभव हो। वैसे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे जापानीज लोग बैठ जाते हैं मेडिटेशन में, वातावरण बहुत शुद्ध हो, वाइब्रेशंस अच्छे हो, तो वो लोग ज्ञान इतना नहीं समझते, लेकिन हमारी वृत्ति और वातावरण, जैसे बाबा कहते हैं ना वृत्ति और वातावरण से सेवा करो, तो वो वृत्ति और वातावरण से सेवा होती है वहां पर। शुद्ध वातावरण है तो उनको अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे ना, और वृत्ति हमारी अच्छी है प्यार की है तो उनको अनुभव होगा, नहीं नहीं तो फिर उनको साफ पता चल जाता है वाइब्रेशन अच्छे नहीं है तो दूर हो जाते हैं, क्योंकि जापान का कल्चर जो है ना डिस्टेंस वाला है। आप देखेंगे कुछ साल पहले जो वहां का राजा है ना, उसके बेटे ने शादी की थी, तो इंडिया में तो गले लगेंगे है ना, शादी का दिन है, क्रिश्चियन लोग भी गले लगते हैं, और वहां पर वो ऐसे सीधा खड़े हो जाते हैं है ना, झुकते रहते हैं एक दूसरे के सामने, तो उनके कल्चर में डिटैचमेंट है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो बुद्ध धर्म है उसमें डिटैचमेंट है ना, तभी कमल का फूल दिखाते हैं। आप जाओ ना श्राइन में, बुद्धिस्ट टेम्पल में, वो कमल के फूल के तालाब बने होते हैं, तो उनका मेन है डिटैचमेंट। मैं इस बार बहुत सुंदर एक जैसे हमारे पास आबू पर्वत है, ऐसे और स्थान तीर्थ स्थान है ना, हरिद्वार ऋषिकेश, ऐसे वहां पर एक जगह है, बहुत सुंदर माउंटेन है पहाड़, तो उस पहाड़ को कहते हैं हेयर्स, वो वर्ल्ड हेरिटेज है, मतलब सारे संसार की संपत्ति है। तो मैंने वहां जाके क्या देखा कि उस मंदिर को जो बनाने वाला था उसने इंडिया में पढ़ाई की, भारत में वो बुद्ध विहार जहाँ बुद्धा का है ना, हाँ गया वहां पर, सारा बुद्ध धर्म में कैसे जीवन चलाना है वो उसने भारत में सीखा। तो उनके मंदिर के बाहर सब पिक्चर्स में भारत, इंडिया। मैंने कहा ये तो अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज है हमने दिया इन लोगों को, भारत वालों ने, तो सारा दिखाया हुआ कि कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे खाना खाना है, कैसे बैठना है, सब चित्रों के रूप में उनकी जो लाइफस्टाइल है वो सारी दिखाई। ऐसे लगता था हमारा ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, परंतु ये बुद्ध धर्म में कैसे जीवन जीना होता है, मेडिटेशन करना होता है, खाना खाना होता है, स्कूल में पढ़ाई पढ़नी होती है, जो सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या, तो वो पिक्चर्स के रूप में दिखाई थी, और वो जो है बहुत उसका नाम है वहां पर, तो वो उसने वहां सीखा भारत से, क्योंकि भारत में जब बुद्ध धर्म चला था ना उस समय जो अच्छे अच्छे थे जिन्होंने सीखा, फिर उन्होंने जापान के लोग, क्योंकि जापान इसलिए भारत के रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनका धर्म भारत से आता है और मित्र है ना जापान और भारत, क्योंकि शांति प्रिय है ना, तो इसलिए मैं हम लोगों ने जब थोड़ा सा और सोचा तो ऐसा लगता है जब त्रेता युग खत्म हुआ होगा, त्रेता युग तो द्वापर युग जब चालू हुआ होगा, तो उस समय जो हमारे लक्ष्मी, जो हमारी सरस्वती, ये वाले जो यादगार है ना उनके देश में है, तो उनके मंदिरों में भी लक्ष्मी, ब्रह्मा बाबा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, उनके जापानीज फेस है लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी, लक्ष्मी की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है, फिर जापानीज भाषा में भी लिखा हुआ है, जो उन्होंने अपनी देवियों को नाम दिए, सब देवियों को उन्होंने अपनी भाषा में नाम दिए, लेकिन ये यादगार हमारी जब वो त्रेता युग द्वापर युग में गया, तो ये आत्माएं जब जो ब्राह्मण बने हैं ना, बाबा के जापान के लोग जो ब्राह्मण है उस समय, बाबा कहते हैं ना वही पूर्वज बनते हैं ना उस धरती के लिए, तो वो मेमोरी लेके गए है ना, तो फिर वो मंदिर बनाते हैं। तो हम लोग मंदिर जब देखने जाते हैं यही देखते रहते हैं कि कैसे कनेक्शन है ना हमारे भारत से, इनका धर्म का भी कनेक्शन है, और देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो भी बहुत सुंदर सुंदर लक्ष्मी सरस्वती बनाई हुई हैं, तो उसके नीचे जो है उन्होंने भारत का नाम भी लिखा हुआ है, वो बुद्ध का माँ का नाम माया था है, वो भारत की है, तो वो भी बुद्ध, वो दिखाया है बुद्ध उसके हाथ में और उसकी माँ, लिखा हुआ है माया फ्रॉम भारत इंडिया। कनेक्शन है ना, भारत का तो सारे वर्ल्ड से कनेक्शन है, कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ पहुंचा हुआ है, इसलिए फिर वापस यहाँ आते हैं। तो विशेष कर ये हम देखते हैं कि कनेक्शन है वहां पर, और वहां के लोगों को मेडिटेशन बहुत पसंद है, योग बहुत पसंद है, और साथ साथ धारणा बहुत पसंद है हमारी, जो हम बोले करके दिखाएं है ना, और ईमानदारी चाहिए तो विश्वास करेंगे, और एक बार थे वो सरदार जी थे कोई, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी बिजनेस में तो नाम खराब कर दिया इंडियन कम्युनिटी का, है ना। तो एक कोई सब सत्यता से चलो, ईमानदारी से चलो उनके बिजनेस में, तो वो आप पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वहां पर मतलब थोड़ा सा भी गड़बड़ी करो ना तो उनका विश्वास कम हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं जैसे मान लो वो सोचेंगे आप बिल्कुल ईमानदार हो, आप बहुत अच्छे हो, हैं, फिर थोड़ी सी आप मिस्टेक करो 10 नंबर कम, दूसरी मिस्टेक करो 10 नंबर कम, वो काटते जाएंगे अंदर ही अंदर, उनका विश्वास कम होता जाएगा। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है वहां पर, ताकि विश्वास बना रहे। और दूसरा, हम लोग जो वहां पर सेवा करते हैं ज्यादातर जो है, जो हठ योग के टीचर्स है ना, हठ योगा टीचर्स, वो भारत से हठ योग सीख के जाते हैं, और बहुत जापानीज जो है बनारस में आते हैं, बनारस, ऋषिकेश और हरिद्वार, है ना। तो यहाँ पर बहुत जापानीज लोग जाते हैं, हद का वैराग्य तो आ जाता है ना उनको बनारस में जाते हैं तो, हद का वैराग्य। तो जब वहां जाते हैं तो वो लोग ज्ञान सीखते हैं हम लोगों से, और हठ योग के लोग बहुत ज्ञान सीखते हैं, क्योंकि योग योग कनेक्शन। फिर राजयोग क्या है वो हम लोग उनको बताते हैं, हठ योग तक तो सीख ही लेते हैं, डिसिप्लिन तो इनके लाइफ में अच्छा ही है, तो इसलिए इनके जीवन में डिसिप्लिन अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट वो देते हैं, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी, क्योंकि इज्जत से बात करो, हार्मनी रखो, है ना, एकता रखो, एक दूसरे के सामना नहीं करते, कभी सामना नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर दबा देंगे, है ना। हम भारत में तो बोल देते हैं ना कोई भी बात होगी, लेकिन वहां नहीं बोलते हैं, अंदर रखते हैं। तो इसलिए राजयोग इनको इसलिए पसंद आता है, क्योंकि यदि दबाते हैं बात को अंदर तो बीमारियां होंगी। तो इसलिए योग सीखो ताकि कम्युनिकेशन, तो हम बाबा से भी कम्युनिकेशन करें और एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेशन करें, तो इसलिए भी ये योग राजयोग सीखते हैं। और बाकी हमने देखा है वहां की सेवा में ज्यादातर टोक्यो में, टोक्यो में क्या है कि बहुत बड़ा वो है, कैपिटल है, हा? जैसे दिल्ली है, इतने लोग रहते हैं वहां पर भी, बहुत लोग रहते हैं, और लाइफ बहुत फास्ट है, किसी को टाइम नहीं है इधर उधर देखने का, काम ही करते रहते हैं। तो इसलिए वहां पर, वहां के सेंटर पर काफी लोग जाते हैं, क्योंकि इतना टेंशन है तो शांति प्राप्त करने के लिए। तो अलग अलग प्रकार के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स बहुत चलते रहते हैं वहां पर, ताकि जिसको जो पसंद आए ले ले। और मेन जो है शाम का टाइम जब योग होता है वहां पर, 4 बजे का योग बहुत अच्छा होता है, रियली बाबा जैसे वहां पर आ जाता है, ऐसे महसूस होता है योग के वाइब्रेशंस। तो बुद्ध धर्म में निर्वाणा की स्थिति बताई है ना, बुद्ध भी निर्वाण तक तो पहुंच ही गया था, नहीं, वाणी से परे और अपने को देखो, किसी को ना देखो, भगवान से क्या संबंध है वो उसने नहीं सिखाया, है ना। क्योंकि बुद्ध से एक बार पूछा गया था परमात्मा से संबंध, तो उसने कहा कि मैं अपनी कैसे कंटेम्पलेशन, मैं अपना विचार सागर मंथन, लेकिन भगवान से संबंध क्या है वो उनके अंदर मेमोरी नहीं है, है ना। वो जैसे भारत में हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म में फिर भी भगवान के प्रति वो है कि डर लगता है या प्यार है, तो उन धर्म में भगवान के प्रति वो नहीं है, संबंध नहीं है। तो वो सोचते हैं कर्म ही पूजा है, आप कर्म करके दिखाओ, कर्मठ बनो, ऐसा सुस्ती वाले लोग नहीं है वहां पर, है ना, देरी से करेंगे काम, आधे में छोड़ जाएंगे, इतने एक्यूरेट हैं, हम लोग तो हैरान होते हैं उनको देख के, है, जो काम एक्यूरेट करते हैं, इतनी सफाई से करेंगे, एकदम ठीक करेंगे कि आप एक भी कमी उनकी निकाल नहीं सको, ये उनकी भगवान की तरफ से गिफ्ट है संगम युग पर, नहीं, इन लोगों ने मेहनत करके अपने देश को बनाया, क्योंकि जब इनका दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना जापान में, तो खत्म हो गया था ना, फिर ये 16 घंटे काम करके दिन रात, उस समय की पीढ़ी, उस समय के लोगों ने इतनी मेहनत करके अपने देश को उठा लिया। तो आजकल के जो लोग जो हैं वहां पर तो फैशन में चले गए, भौतिकवादिता में चले गए, क्योंकि बना बनाया मिल गया। लेकिन इतनी मेहनत तो उनके माँ बाप ने सभी ने की। तो इस बार हम लोगों ने प्रोग्राम किया था इनर पावर इनर प्रोटेक्शन हिरोशिमा में, जहाँ बम पड़ा था। तो हम लोगों ने कहा वहां जरूर करें, क्योंकि वहां के वाइब्रेशन ना ऐसे लोगों को हद का वैराग्य देते हैं। क्योंकि जैसे जाओ ना वहां म्यूजियम देखने, तो जब बम पड़ा था 3 सेकंड में क्या हो गया था, उस समय एक बहन कैबेज काट रही थी, कैबेज जैसे बम पड़ा उसने ऐसे देखा खत्म, मतलब इतने थोड़े टाइम पर क्या हो गया था। तो वो सेम चीजें उन्होंने म्यूजियम में रखी हुई है। उस समय बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके लंच बॉक्स को क्या हुआ, और ये चमड़ी को क्या हुआ, बाल को क्या हुआ, साइकिल को क्या हुआ, जो चीज जैसे ही थी उस समय वैसे ही रखी हुई है। तो जब आप म्यूजियम देखो ना कि उस समय बम पड़ने से क्या असर हुआ, तो नींद नहीं आती उस दिन रात को, क्योंकि बहुत वैराग्य आ जाता है कि इंसान का क्या हाल हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर म्यूजियम के बाहर जाओ तो एक पत्थर है, हैं? वहां पर सबको जाकर के मेडिटेशन करना होता है, प्रेयर करनी होती है। तो म्यूजियम देखने के बाद तो उसमें लिखा हुआ है, हे मानव तुम कभी ये भूल दोबारा नहीं करना। और आज कितने बम्स बन चुके हैं पता नहीं, उन्होंने तो इनग्रेव करके लिखा हुआ है, और सभी मेडिटेशन में बैठते हैं और पढ़ते भी हैं, हैं? देखते भी हैं, साइन भी करना होता है सबको, स्टैंप भी लगानी होती है, हैं? चलो जिनका पार्ट होगा वो तो बाबा ने कह दिया ना, विनाश तो हाँ होगा ही, कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वहां लिखा हुआ है ये, क्योंकि क्या हालत हो गई। लेकिन शहर तो बहुत सुंदर है, फिर दोबारा बना दिया ना उन्होंने, दोबारा बना दिया। लेकिन हमने कहा यहाँ जो सेवा करें, तो वहां पर 2-3 ब्राह्मण बने हैं, है ना, तो ब्राह्मण बनने के बाद तो सेवा चालू हो जाती है, तो फ्री जगह मिलती है गवर्नमेंट से। तो हम लोग हर महीने एक प्रोग्राम करते हैं वहां पर, और हर बृहस्पतिवार को जहाँ बम पड़ा था ना वहां जाकर के बैठ के योग करते हैं, क्योंकि वहां पर योग करने से वैराग्य आता है। तो मैं भी गई ना पिछले महीने, बैठी थी मैं योग, इतने लोग थे, इतने फॉरेनर्स, इतने बच्चे आते हैं, VIPs आते हैं, भरा रहता है वो जगह, गार्डन्स हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, फिर म्यूजियम है, फिर अंदर जाओ। तो वो वहां पर हमने ये देखा कि लोगों को हम ज्ञान सुना सकते हैं। तो जब वो मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, प्रार्थना करने बैठते हैं, तो हम लोग बहुत सारे ब्लेसिंग्स बना के ले जाते हैं, तो देते रहते हैं, है ना, कभी भी किसी को टच हो जाता है। अमेरिकन्स बहुत हैं, यूरोपियंस आते हैं, बहुत लोग आते हैं, जो भी इंडिया से भी लोग आएंगे कहेंगे वहां जरूर जाना है। जैसे यहाँ तीर्थ स्थान होता है ना भारत में, तो वो उनका तीर्थ स्थान ही हो गया ना, कलयुग में तो वही ऐसे ही है तीर्थ स्थान उनके, और कहाँ है, क्योंकि मंदिर तो उनके भी बहुत अच्छे हैं, पहाड़ों पर है मंदिर। तो इसलिए उनके देश में 2 सत्ताएं हैं ना, एक है धर्म की सत्ता और दूसरी है ये वाली सत्ता राजनीति की, ना साइंटिस्ट, बाबा ने भी कहा था है ना, साइंटिस्ट लोगों की सेवा करो, और बिजनेस भी बहुत जबरदस्त चलता है वहां पर, हर एक चीज पॉलिश्ड है, यू नो पॉलिश समझते हैं, मैनर्स, हाँ बोलना करना, ड्रेसअप होना, यू नो ठीक, लिफ्ट में भी वो खड़े होंगे ठीक, लिफ्ट दबाएंगे फिर आपके आगे झुकेंगे फिर नमस्कार, मतलब पूरा इनके जो कर्म कर्म ही ना ठीक होना चाहिए, जो कर्म है ना A to Z वो है, तंग करने वाला कर्म नहीं है आधे में छोड़ गए फिर बैठे रहो, ऐसा नहीं। हाँ इनकी कर्म ही पूजा है, कर्म में ही ये होशियार है, और हेल्थी लोग हैं, बहुत अच्छे वो है, और करते भी सब काम खुद हैं, हाथ से, किसी पर निर्भर नहीं, वहां नौकर चाकर नहीं मिलते। लेकिन इंडियन लोग जो नौकर रखेंगे वहां पर भी इंडियंस जो रहते हैं ना वहां पर, तो वो 1 घंटे का $10 देते हैं, $10 समझते हो कितना हुआ, 400-500 रुपए 1 घंटे का। जो भी इंडियंस रहते हैं वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जरूर नौकर रखेंगे। तो फिर जापानीज लोग जो है ना वो पसंद नहीं करते हैं किसी का नौकर बनना, क्योंकि उनके देश में किसी ने राज्य नहीं किया। तो फिर वो उनको आप है ना, इंडियंस है ना, वो उनको आदत होती है ये लाओ वो लाओ, है ना, तो उनको पसंद नहीं है। वो पहले बैठा के इंडियंस को ही समझा देते हैं कि मेरी ये जॉब है, नौकर नहीं हूं मैं। हाँ, ये मेरी जॉब है, नौकरी जैसे जॉब होती है। तुम इतना पैसा देंगे, इतने बजे मैं आऊंगी, इतने बजे चली जाऊंगी, और तुम मुझे बार बार नहीं कहना खिड़की साफ करो, आज ये करो, आज वो, इधर बुलाओ उधर बुलाओ, ऐसे नहीं करना तुम। हाँ, और 3 बार झुको पहले कि हम, मेरी मेहर, आपकी मेहरबानी कि आप हमारे घर में काम कर रहे हैं, ऐसे जापानीज में बोलते हैं कुछ नहीं, देखो कितना अच्छा मैनर्स ही है ना। तो वो उल्टा, वो जो इंडियंस है ना, सिंधी लोग भी हैं वहां पर, तो उनको बोलना पड़ता है ओनागा शिमास मीन्स मैं फेवर करती हूँ आपकी, मेहरबानी आप हमारे घर में काम करने, ऐसे बोलना पड़ता है जब वो आए। हाँ, ये मैनर्स है वहां पर, नहीं बोलेंगे तो वो ना बुरा समझते हैं। हाँ, आज हम सब्जी भी खरीदने जाएंगे वहां पर, तो ऐसे ये बोलना पड़ता है ओनागा शिमास मेहरबानी आपकी, है ना। तो ये एक मतलब कर्टसी है, होती है वहां पर। तो इंडियंस जो हैं वो लोग फिर जापानीज लोगों को ऐसे नहीं चला सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते वहां पर, है ना। हमारे भारत में राजा के संस्कार होते हैं ना, तो वहां नहीं कर सकते हम लोग। तो वो जो जो भी आते हैं वो काम करने वाले, उनको बहुत आदर से करना पड़ता है काम, आदर से करो, सत्कार दो उनको। अच्छा, 6 बजे हैं तो 6 बजे उनको जाना है, बोल नहीं सकते आप 1 मिनट ठहर, ये कर वो कर, ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, वो बर्तन आधे धुल लें तो आधे ही धो के जाएगी, पूरे 6 बज गया तो 6 बज गए, वो कल आके धोएगी, समझा। समय पर उनकी है टाइम, आप उस टाइम पर खत्म करना है, जितना होगा होगा। तो फिर इंडियंस ने सोचा ये तो बड़ा मुश्किल है जापानीज लोगों, तो वो फिलिपिनो सभी आते हैं ना वहां पर, तो फिलीपीन में तो बहुत सस्ती है नौकरी चाकरी, बहुत नौकर मिलते हैं, क्योंकि फिलीपींस में क्या है कि गरीबी है, तो उनको पैसा चाहिए, तो वो जाते हैं इन देशों में पैसा कमाने, तो उनको कोई हर्जा नहीं है। तो इंडियंस कैसे भी बोले उनके साथ पैसा तो मिल जाता है ना, तो फिर वो लोग फिलिपिनोस को ही रखते हैं। हाँ, जो जापानीज लोग हैं वो बहुत कम लोगों के घरों में बहुत संबंध बना के रखना पड़ता है जापानीज लोगों के साथ, थोड़ा सा भी वाइब्रेशन ऑर्डर का दे दिया वो काम नहीं करेंगे। हाँ, मतलब वो उनके, उनको समझना पड़ता है ना उनका कल्चर, उनके स्टैंडर्ड है ना। हाँ, उनके देश का वो है ना कल्चर है ऐसा, तो वो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हम लोग, उल्टा झुक करके उनसे कराना पड़ता है, जो मालिक होगा ना उसको झुकना पड़ता है, झुक करके कराना पड़ता है, क्योंकि जॉब है ना वो, नहीं है ना ये। तो अभी आप देखो ब्राह्मणों में तो, और भी ब्राह्मणों में तो हम लोगों को भी कितनी बार कहना पड़ता है ओनागा शिमास है ना, मैं मेहरबानी आपकी, आप है ना ये काम कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और फिर करने के बाद 2-3 बार कहना पड़ता है धन्यवाद आपका, 1-2 शब्द होते हैं वो हम लोगों को सबको सीखने पड़ते हैं, उनके मैनर्स हैं ये, तो हम भी सीखते हैं ना उनके, और हम भी अपने भारत का प्यार सिखाते हैं उनमें। ये क्या है कि काम कर करके थके पड़े हैं, और उनको प्यार देना है, शुद्ध वातावरण देना है, शुद्ध वृत्ति देनी है, इससे ही सेवा है। ज्ञान की बुद्धि में नहीं इतना बैठता है, उनको कोई परवाह नहीं, 5,000 वर्ष का साइकिल है कोई भी हो आत्मा परम धाम में रहती है, आती है शरीर में पार, कुछ भी हो वो सब ठीक है कहते हैं, है ना। लेकिन हमारा चरित्र अच्छा हो, वैल्यूज अच्छे हों, धारणाएं अच्छी हों, ये उनको बहुत पसंद है। प्यार, स्वच्छ प्यार, शुद्ध प्यार, ये जो बाबा कहते हैं ना अंदर की चीज जो है, रियल चीज, वो उन लोगों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तभी जाकर के वो अपने बन पाते हैं, है ना। तो इतना आसान नहीं है इन देशों में सेवा करना, क्योंकि इनको पहले से ही भौतिक सुख है, लेकिन उनमें वैराग्य आए, उनको निकालो उन सुखों से, तो इसलिए बहुत बहुत शुद्ध वातावरण बना करके बैठो, तब जाकर के आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं वो तो आती हैं, बाकी तो कितने आते हैं, कोर्स करते हैं चले जाते हैं, हैं? यहाँ पीस ऑफ माइंड में भी कितने आते हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं देखा जाए, लेकिन इतने फ्रेंडली नहीं होते जापान के लोग, रिजर्व हैं, बोलते नहीं हैं, और आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंडिया में तो इंटरफेयर कर देते हैं ना, किसके घर में क्या हो रहा है सब पता होता है, वहां नहीं, कुछ नहीं पता है कि नेबर कौन है, हमको नहीं पता है. पड़ोसी कौन है हमारा, हमको ये भी नहीं पता होता है ना. रिजर्व कल्चर है. हाँ क्या, हाँ वो बुद्धि ना संकीर्ण यानी खुली हुई नहीं है इन लोगों की. काम करना है, घर आना है, घर से काम करना है, काम से घर आना है, ये अंत तक शरीर छोड़ के चले जाना है. और एक एक चीज फिक्स है, सिस्टम फिक्स लगे पड़े हैं. अंत तक मरने के बाद क्या होना है, कौन सी गाड़ी आनी है, यू नो सारे फिक्स हुए पड़े हैं. नहीं, सिस्टम से चलती है ना वो देश. और हरेक को 3 मिलियन येन माना $30,000 रखना पड़ता है मरने के लिए. हाँ इतना महंगा है वो उनका बॉक्स उनको. वो क्या है कि वहां के जो प्रीस्ट लोग हैं ना बुद्धिस्ट, वो भी तो कमाते हैं ना बहुत. हाँ तो इसलिए वो लोगों को उतने लेवल तक सबको रखना है. हमने कहा भाई उनको हमारा कुछ हो जाए यहाँ भारत में ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं खर्च होता इतना, वहां तो कितना खर्चा है. हर एक जापानीज बीकेस ने भी सबने रखा हुआ है, क्योंकि इतना गवर्नमेंट कहती रखो. हाँ मरने के टाइम कुछ भी हो इतना चाहिए. मतलब इस ढंग से चलता है ना वो देश, सिस्टम से चलता है स्ट्रक्चर. है हाँ रिटायर्ड भी हैं, मतलब उनके सिस्टम तो अच्छे हैं, उनके रिटायरमेंट में उनको पैसा मिलता है, ये सब कुछ होता है. लेकिन जो हमारे भारत का कल्चर है ना कि परिवार में सो सो बड़ा बच्चा हो वो माँ बाप की सेवा करे, उनमें भी है. जो बड़ा बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, उनके परिवार का, वो अपने माँ बाप को देखे. ये कल्चर उनका है, अच्छा कल्चर है. परंतु आजकल मॉडर्न सोसाइटी में इतने बिजी हैं तो देख नहीं पाते हैं. लेकिन प्रेशर होता है, उनको देखना पड़ता है, ये इनके कल्चर में है. पुराना तो इनका भारत जैसा ही कल्चर था ना, पारिवारिक. तो ये जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और इनको बहुत मेहनत करके देश को बनाना था और ये वो है ना सब फैक्ट्रीज बननी थी, उसके बाद ये अलग अलग हो गए. तो वास्तव में इनका कल्चर हमारे भारत से बहुत मिलता जुलता है, पुराना कल्चर जो परिवार में बैठो खाओ दिल की बात सुनाओ है ना, दिल हल्का करो, वो था. तो अभी जो है इनके कल्चर में बहुत काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, इतना महंगा. हर मालूम है वहां हर एक चीज महंगी है. एक टमाटर भी मालूम है कितने का है, हा? हाँ 45 रुपए का एक टमाटर. तो हम लोग टमाटर वहां कहाँ खाते हैं. क्योंकि हमने कहा हम लोग इंडिया से है ना, तो सोचते हैं वो $1 नहीं जरूरत है खाने की है ना. उनके वो लोग तो आपस में ले आते हैं खाते हैं. जब मैं वहां होती हूँ तो मैं वो मेरे से पूछते हैं बहुत महंगा है लेना है, मैंने कहा नहीं लेना. क्योंकि इतना महंगा, एक गोभी भी कितनी 60 रुपए की. हाँ महंगा है देश. और हम लोग जैसे हम दिल्ली से माउंट आबू आते हैं ना, तो वहां बहुत फास्ट ट्रेन होती है. तो वो फास्ट ट्रेन कितना मेरा मैं लगाती हूँ पैसा जाने का आने का, $225. हाँ $225 माना कितना हुआ, 15,000 रुपए. हाँ 15,000-20,000 लगता है एक टोक्यो जाने में, आने जाने में. क्योंकि ये सिस्टम है वहां का, क्या कर सकते हैं ना. कमाई भी वैसी है और खर्चा भी वैसा ही है. क्या समान तो इनका, ये लोग 3 बार करते हैं स्कैनिंग, जानते हो स्कैनिंग. तो हर एक चीज की स्कैनिंग 3 बार होती है. जिसमें भी थोड़ा दरार आ गया, कुछ कमी है, उस चीज को फेंक देंगे, वो मार्केट में नहीं आने देंगे. ये लोग क्वालिटी के पीछे हैं. हाँ हर एक चीज क्वालिटी है यहाँ. तो इस देश में अभी चाइना का माल बिकता है ना, कोरिया का माल बिकता है, लेकिन जो इनका अपना माल है वो कोई नहीं दुनिया में, कोई नहीं बीट कर सकता इनके साथ. क्योंकि इनकी तो है ना क्वालिटी, फैक्ट्रीज कंपनीज इनकी मशीनें सब. तो वहां पर जो है ना हम लोग जो भारत के लोग रहते हैं कोबे में, हम लोग काफी फैमिलीज हैं और टोक्यो में भी है. हम लोग मिलते जुलते हैं इनके साथ, अच्छे संबंध रखते हैं इन लोगों के साथ, बुलाते हैं घरों में और खिलाते हैं इन लोगों को, पारिवारिक प्यार देते हैं इस प्रकार से. लेकिन ये लोग अंदर के बहुत साफ हैं, बहुत साफ लोग हैं जरा भी चलाकी नहीं जानते, है ना, इधर से उधर मोड़ना, मैनिपुलेशन करना, कंट्रोल करना, ये नहीं करते हैं। सीधी बात ठीक ईमानदारी से करो तो ट्रस्ट, तो नहीं तो ट्रस्ट खत्म। तो ये इनका एक वैल्यू है ना, बाबा कहते हैं ना हर एक देश को संगम युग में भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिला, भारत को प्यार है ना, प्यार देते हैं, और वहां पर ये इनकी वैल्यू है ईमानदारी। तो समझा, आप बिना देखे जापान हो आए नहीं अच्छा है, ग्रीन है, बहुत अच्छा ग्रीन देश है, साफ सुथरा है, हमने तो बहुत कुछ सीखा है उनसे भी। देखो वो बाहर रोज मैं सैर करने जाती हूँ ना, तो बूढ़े बूढ़े लोग होंगे ना, जो बाहर ऐसे कूड़ा होगा ना वो भी साफ कर देंगे। नहीं, ये जो उन देश के लोकल लोग होते हैं ना उनकी बात है, लोकल जो होते हैं ना लोकल लोग, उनको रिक्वायरमेंट है कि आप किसी पर निर्भर नहीं रहना, है ना, और हाँ इंडिपेंडेंट नहीं, तो अपनी कमाई की है तो उसमें ये खर्चा करना। ब्राह्मण तो सिंपल है, अभी एक इंडियन फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, मैं आने गई थी वहां पर देखने, क्या है कि वहां तो कमरा ही जहां पर बॉडी रखते हैं, क्या बढ़िया कमरा है, 10 लोग तो वहां पर आइए आइए ये करने वाले भी होते हैं, उनको भी पैसा दो, वो चाय का कप बना के बैठे हैं उसको भी पैसा दो है, और एयर कंडीशन लगा पड़ा है, फूल लगे पड़े, सब पैसे ही है ना, उस बिजनेस कंट्री है ना वो, तो हर एक चीज में वो तो पैसा कमाएंगे ना, बिजनेस कमाएंगे। तो हमको एक इंडियन बहन ने समझाया कहती कि हमको एक जापानीज ने फोन किया कि एक हमारी बीके थी उसकी सास की शरीर छूटा, तो कहा तुम ये सारी सेवा नहीं लेना, वो आना वो होते ना आप भगत करने वाले चाय पिलाने, उनको काट 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 के जो बहुत जरूरी हो वही लेना, क्योंकि उनके देश में ये सारे हैं, है ना, आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए, आप भगत करने वाले, चाय पिलाने वाले, फूल लाने वाले, या आपको कुछ नहीं चाहिए, जो जरूरी चाहिए वही करो, तो उतना कम खर्चा हो जाएगा ना। अच्छा वो लोग तो कहेंगे आपको कि ये भी आपको करना है, वो तो कमाने के लिए कहेंगे, बिजनेस है ना, सब जगह बिजनेस लगा हुआ है। हाँ तो वो हाँ, लेकिन वो तो चलो थोड़े से पैसे लेते हैं ना, यहाँ तो कितना पैसा लेते हैं। तो अभी एक बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत यंग था, उसकी डेथ हो गई, मैं आने वाली थी एक दिन पहले, तो इंडियन कम्युनिटी सब जाते हैं ना, हम लोग थोड़े से ही हैं वहाँ 500 लोग, तो सब जाते हैं, जिसकी भी शरीर छूटता है और कहीं शादी हो या पार्टी हो ना जाओ, लेकिन इंडिया से हम तो मिलजुल के रहें। तो मैं गई, बहुत यंग व्यक्ति था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन बहुत समझदार, उसने अपने को कैंसर हो गया, उसको डॉक्टर ने कहा 2 साल तू जिएगा, तो उसने कितनी समझदारी की, अपने बच्चों को बुला के समझा दिया, मेरा शरीर छूटेगा, तुमको ये कंपनी चलानी है, ऐसे ऐसे करना है ना, अंत तक ये नहीं रखा कि छुपा के, नहीं समझाया, सभी यही कह रहे थे, वो समझदार था वो व्यक्ति, कि सारे अपने को सेट करके गया, सबको, बच्चों को, पत्नी को, सब क्लियर। लेकिन वो लोग तो वहां शरीर जला के फिर या दिल्ली में या कहाँ आए वो राख लेके, एशेस लेके, हाँ हरिद्वार गए होंगे, तो वो मारवाड़ी फैमिली है, उनका अपना कोई होगा रीति रिवाज, है ना, तो वो करेंगे, बस एक दिन के बाद निकल भी आए वहां से, तो उनका वो बता रहे थे काफी खर्चा हुआ, क्योंकि उनको थोड़ी, क्योंकि इमोशनल होता है ना इंसान, उनको पता ही नहीं चलता, तो वहां हाँ कर दिया, इतना बढ़िया जगह थी, मैंने देखा जाके, मैंने कहा कितना खर्चा हो रहा है एक शरीर के पीछे, लेकिन वहां का सिस्टम है ऐसे, तो लोगों को सिस्टम पे चलना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ लोग जलाते हैं, कुछ दफनाते हैं, अलग अलग होता है ना। मतलब वहां पर जैसे हम लोग तो बाबा का यही ज्ञान सुनाते हैं, तनाव से कैसे मुक्त हो और शुद्ध वातावरण और पारिवारिक प्यार, ये हमारे 3 हैं, बाकी ये लोग ज्ञान के वो नहीं है कि ज्ञान ज्ञान वो नहीं, इनको अपना प्यार दो सच्चा और वातावरण बहुत शुद्ध दो, वृत्ति बहुत साफ रखो और जीवन की धारणाओं से इनकी सेवा होती है। ओम शांति। एक मिनट शिव बाबा को याद कर। 100 हैं, 100 के करीब। सब जगह महंगा है, इंडिया ही सस्ता है, भारत सस्ता है।
आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। Name